हमारे आदरणीय अलका दीदी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। आदरणीय अलका दीदी की अध्यक्षता में पिछले वर्ष भी एक बहुत सुंदर अंतिम समय की तैयारियों वाला प्रोजेक्ट चला था, जिसमें परमात्मा की टचिंग, परमात्मा के साथ मैचिंग वाला एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने बहुत सुंदर सुंदर अभ्यास किए थे। और इस वर्ष भी एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट जिसका विषय है कृतज्ञता व्यक्त करना। तो ये कृतज्ञता का जो प्रोजेक्ट है, इसको ही एक बहुत सुंदर क्लास के रूप में हम अभी सुनेंगे कि कैसे जब हम कृतज्ञ बनते हैं, जब हमारे मन के अंदर आभार भाव व्यक्त करने वाली भावनाएं अधिक होती हैं, तो वो हमारे जीवन को कैसे बहुत सुंदर बनाता है। आदरणीय अलका दीदी जी, कल्याण तथा उनके संबंधित सेवा केंद्रों का बहुत सुंदर संचालन करते हैं, सदैव बाहर की सेवाओं के साथ साथ वहां के ब्राह्मण परिवार की उन्नति के लिए भी आप सदैव तत्पर रहते हैं। आदरणीय अलका दीदी जी, जब कल्याण में आए थे तो सेवाओं का इतना विस्तार नहीं था, बहुत सारे सेवा केंद्रों पर सेवा केंद्र जो अभी वहां चल रहे हैं, तो शुरू से ही आप वहां जीरो से स्टार्ट करने के निमित्त बने। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में हमारे दीदी जी ने सेवाएं की हैं, ऐसी जगहों पे सेवाएं की हैं जहां पे हिंदू मुस्लिम्स की बहुत लड़ाइयां चल रही थी, कर्फ्यू लगे हुए थे, और ऐसे कोई खास सुख सुविधाएं, साधन या रहने के प्रॉपर स्थान नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने उस परमात्मा के प्रति अपनी जो समर्पण भाव है, इन ईश्वरीय सेवाओं को करने की जो लगन है, उसके द्वारा आपने बहुत सारी परिस्थितियों को बहुत सुंदर तरीके से आपने फेस किया और सेवाओं को बहुत विस्तार किया वहां की सेवाओं का। और दीदी हमेशा से ही एक बहुत अच्छे निर्णायक है, वहां की सेवाएं जब भी होती हैं या जो भी होता है उसमें दीदी जी की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, जिसमें सबका भला हो, सब सुख पाएं, यही आपके मन के भाव रहते हैं। और दीदी हमेशा ही एक अच्छे स्टूडेंट हैं, दीदी बहुत अच्छा ज्ञान सुना पाते हैं, उसका बेस है कि दीदी हमेशा ही खुद बहुत पढ़ाई करते रहते हैं। जब भी हम दीदी के रूम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमेशा से ही उनके हाथ में अव्यक्त वाणी कोई बुक होती है जिसको वो पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे हम सबके मध्य आदरणीय अलका दीदी आए हैं, हम एक हाथ हिलाकर अपने चेहरे की मुस्कान और दिव्य दृष्टि लेते हुए आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और आज इस कृतज्ञता के विषय को हम समझते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। तो हम सभी के लिए हमारे प्रति अपनी उन्नति के लिए और साथ साथ नीचे हम सभी का लक्ष्य जो है ब्राह्मण जीवन का, जिसको हमें पाना है, उसी के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हमें जो सहयोग चाहिए वो हमें विशेष जो एक बहुत सुंदर प्लान आदरणीय रमेश भाई जी ने बना के दिया है, जो स्व उन्नति का प्रोजेक्ट और विशेष कोई ऐसी टॉपिक लेकर के हम अपने आप को संपन्नता की ओर ले चले, तो ये एक विधि भाई जी ने शुरू की और उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत फायदे हम सब भाई बहनों को मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो हम आगे आगे पढ़ते ही जाते हैं और पीछे का हमारा भूलता जाता है, लेकिन जैसे हम प्रोजेक्ट को साथ में लेना शुरू करते हैं तो हम पहले क्या पढ़ चुके हैं और उसको हमने अपने जीवन में कहाँ तक धारण किया है, तो ये उसका आकलन जो है वो हम अपने पढ़ाई के द्वारा फिर से करने लगते हैं। और जब ध्यान में आता है कि ये सब बातें जानते हुए सुनने के बाद भी हमने अपने जीवन में धारण करने में कितना अपना पुरुषार्थ किया है, तो ये प्रोजेक्ट हमारे स्व के लिए है। और जैसे हम प्रोजेक्ट लेते हैं और अटेंशन रख करके उसके पीछे हम अपना समय देते हैं, तो जरूर है उसके बहुत सारे फायदे हमको मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि हम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। और प्यारे बाबा ने कहा है कि बच्चे जब आप व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे तो बाबा आपको अवार्ड देगा, इनाम देगा। तो बाबा का इनाम तो कोई स्थूल वस्तु नहीं है, लेकिन बाबा की गुप्त मदद, बाबा का गुप्त शक्तियों का स्टॉक जो हम सबको मिलता है वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड है। तो जब हम देखते हैं कि ऐसे मौके हमको मिलते हैं और उसी लक्ष्य से ज्ञान की गहराई को अपने जीवन में धारण करने के लिए ये एक नया अभ्यास जो हम बच्चे चलते फिरते करते रहते हैं, लेकिन इसको विधिवत एक लेसन बनाकर लक्ष्य बनाकर के हम करें, तो ये कृतज्ञता का वर्ष जैसे हम अपने आप के लिए मनाएं। और वो एक शक्ति, उसको कैसे हम शक्ति के रूप में अनुभव करें, वास्तव में देखा जाता है तो हम कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कोई भी कार्य के पश्चात हम सबका सहयोग लेते हुए जब कार्य को संपन्न करते हैं तो लास्ट में धन्यवाद का प्रस्ताव रखते हैं। तो ये धन्यवाद जो हम एक दूसरे को देते हैं, तो जिसने बहुत कुछ किया हो, जो भी उसने मेहनत की हो, जो उसके अथकपन का जो उसका एहसास था, उसको एक बहुत सुंदर सम्मान मिल जाता है कि मुझे किसी ने समझा कि मैंने कुछ किया है। और विशेष हम देखते हैं कि जब हम बहुत कुछ करते हैं और किसी का ध्यान नहीं होता है तो फिर कहते हैं कि हमको कोई समझता ही नहीं है, हमको कोई जानते ही नहीं है, हम भी कोई कुछ कर सकते हैं, हमारी भी कोई विशेषता है, योग्यताएं हैं जिसको ईश्वरीय कार्य में हम लगा रहे हैं, लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं है। लेकिन जब एक धन्यवाद किया जाता है तो उस व्यक्ति को लगता है कि मैंने जो किया उसका एहसास सबको है, तो एक बहुत आंतरिक शक्ति उस आत्मा को भी मिल जाती है, उसको भी एक स्नेह प्यार और सम्मान मिलता है। तो ऐसी एक सुंदर विधि हम अपने जीवन को कैसे दें, जिससे हम इस संसार में आकर के लौकिक जीवन से लेकर के हम शुरुआत करें, तो जब शरीर लेने से लेकर जन्म से लेकर के हम इस संसार में कितनों का सहयोग लेते हुए चल रहे हैं, क्या उन सभी को कभी हमने धन्यवाद किया है? जैसे इस संसार के अंदर हम देखते हैं कि जो खेल चल रहा है इसमें मुख्य जो तीन बातें हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, जो अमर है, अविनाशी है और वही इस खेल का आधार है। और उन सभी के सहयोग के साथ ही हम इस जीवन का आनंद ले रहे हैं, तो क्या हमने इन सभी का धन्यवाद का प्रस्ताव कभी अपने मन में लाया है? कभी बैठ करके हम अपने आप से देखें, क्या मुझे इस जीवन के अंदर जो कुछ प्राप्त हुआ है इसमें कितनी आत्माओं का सहयोग मिला हुआ है, कितने मित्र संबंधियों ने इसमें मुझे सहयोग दिया हुआ है, जो मैंने जीवन के अंदर प्राप्त किया है वो अपने ही अकेले बल पर नहीं किया है, लेकिन जिनका भी सहयोग हमको मिला है उनको हमें धन्यवाद करना जरूरी है। वैसे भी हम सभी को पता है कि ये हमारा अंतिम जन्म है और अंतिम जन्म का भी अंतिम समय है, तो अंतिम समय पर कोई भी कार्यक्रम का अंतिम समय आभार प्रदर्शन से होता है। तो जब हमें भी अपना अंतिम समय का पुरुषार्थ करना है तो हमें संसार में सबका आभार कर देना है। तो जिससे भी हमने सहयोग लिया है, जिसके सानिध्य में हम आगे पीछे सुख शांति का अनुभव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो इन सभी को हम अपने बुद्धि में लाए। लौकिक जीवन के अंदर अगर आप नजर डालोगे तो बचपन से लेकर के कितनों का धन्यवाद आप करते आओगे। आप अपने मन में एक एक व्यक्ति को एक एक स्टेज को इमर्श करते चले तो आपको एक सीन दिखाई देंगे कि हमको किसने लायक बनाया, हम बच्चे थे तब कैसे थे, क्या क्या गलतियां करते थे, उसमें किसने सुधारा, कैसे हमको संवारा, कैसे हमको श्रेष्ठ बनाने के लिए मेहनत की, किसने हमको पढ़ाया, किसने हमको योग्य बनाया। तो ये सारी बातें अगर हम अपने जीवन के अंदर याद करें तो बहुत सारी लंबी लिस्ट सामने आ जाएंगी। लेकिन अब हमको पता है कि हमको इस संसार का पूरा ही ड्रामा का 5-4 वर्ष का खेल पूरा हो रहा है, तो क्यों ना इन सभी को अब धन्यवाद कर दे कि इन सभी के सहयोग से मैंने सृष्टि रूपी रंगमंच पर बहुत अच्छा खेल खेल पाई। और ये खेल हमारा अभी से नहीं लेकिन सतयुग से लेकर के आरंभ होता है और इस अंतिम जन्म तक। तो हम शुरू से लेकर अभी तक जिसके सानिध्य में आते हैं, जिसके सहयोग से हम ये खेल खेलते हैं, वो है प्रकृति। सतयुग में भी हमारा शरीर जो होता है प्रकृति का ही बना होता है और आज भी हम उसी प्रकृति के बने हुए शरीर रूपी घर में बैठे हैं, तो उस प्रकृति के प्रति भी हमारे अंदर से क्या भाव निर्माण होते हैं और उसने जितना हमको सहयोग दिया है क्या उस सहयोग का मैंने उसको रिटर्न कुछ दिया है। तो उसको रिटर्न देने के लिए इस समय पर बाबा ने हमें बहुत सुंदर विधि बता दी है कि इन प्रकृति के 5 तत्वों को हम कैसे सत्व प्रधान बनाए और उस सत्व प्रधान स्टेज में आकर के हम उसको अपने वाइब्रेशंस की द्वारा, पवित्रता की किरणों के द्वारा इस प्रकृति को भी धन्यवाद दे दे कि आपने ये सब चीजें मुझे दी थी, लेकिन इन सब स्थितियों को, इन सब प्रकृति की अवस्था को मैंने अपने कर्मों से बिगाड़ा, मैंने अपने विचारों से बिगाड़ा और प्रकृति जो सत्व प्रधान थी हमने उसको तमो प्रधान स्टेज पर पहुंचाया। वो कौन थे? तो वो हम ही थे। तो मैं ही आत्मा थी जिसके लिए निमित्त बनती गई और मेरे व्यर्थ संकल्प, मेरे व्यर्थ कर्म, मेरे व्यर्थ बोल जो इस संसार के अंदर, वातावरण के अंदर जो प्रदूषण तैयार करती रही, तो उसके लिए जब हम निमित्त बने हैं, अभी हमको उसको परिवर्तन करने के लिए निमित्त बनना है कि अब हमें बहुत सुंदर विधि बाबा से मिली है, तो हम जितना बाबा से पवित्रता का बल प्राप्त करेंगे और वो पवित्रता की शक्ति प्रकृति को देंगे तो ये भी प्रकृति को रिटर्न हो जाएगा। तो इसको भी हम प्रकृति को भी धन्यवाद के साथ उसकी जो चीजें हमने बिगाड़ी हो उसको वापस लौटाने का प्रयास करना है। ऐसे हम सभी ने माना, हम आत्माओं ने इस संसार में पाठ बजाया, तो अकेली आत्मा तो यहाँ पर कुछ पाठ बजा नहीं सकती, सबके साथ है तो मजा आ रही है। आज हम तपस्या कर रहे हैं, बड़ा संगठन में बैठे हैं तो आनंद आ रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं, मन में उमंग आता है कि चलो हम सभी भी बैठे हैं तो मुझे भी बैठना है, तो एक संकल्प का बल मिलता है, वाइब्रेशंस मिलते हैं। तो जैसे संगठन का बल हमको मदद करता है, तो हम सब आत्माओं ने संगठित रीति से इस संसार के अंदर जैसे ये तपस्या के बल से हम सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं, ऐसे ही हम सभी ने संगठित रूप से इस संसार को नकारात्मक ऊर्जा से भी भरा है। अब हमारा वही दायित्व फिर से हो जाता है कि जो चीज हमने बिगाड़ी है उसको कौन सुधारेगा। शिवाबा भी बहुत युक्ति युक्त हम बच्चों से सेवा करवाता है कि बच्चों ने बिगाड़ा है और बच्चों से ही सुधार लो। तो बाबा बहुत युक्ति से और हमें कोई बात को फील न कराते हुए इतनी सेवा की भावनाओं को अंदर भर देता है और कहता है कि बच्चे आपको ऐसी अवस्था बनानी है ताकि सब आत्माओं की वृत्तियां परिवर्तन हो जाए, सब आत्माओं में श्रेष्ठ शुभकामनाओं की निर्मिति हो जाए। तो ऐसी आपको अपने अंदर शुभ भावना रखनी, शुभकामनाएं रखनी है। तो जब हम देखते हैं कि बिगड़ी हुई चीज को कैसे सुधारना है, वो अगर सीखना हो तो शिव बाबा से, और कैसे युक्ति से बाबा ने हम बच्चों को इस कार्य में लगा दिया है। इस संसार की जो जो बातें परिवर्तन हमने करने के निमित्त बने हैं, उन सब बातों का परिवर्तन फिर से करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को संगम पर ये कार्य दे दिया है। तो फिर से वापस सृष्टि सत्व प्रधान बननी है, फिर से आत्माओं को सत्व प्रधान बनना है। तो ये सारा कार्य जैसे ही बाबा हमारे से करवा रहा है, तो उस प्यारे पिता का जिसे हमारे दिल से धन्यवाद निकलता है कि बाबा आप न मिलते तो मेरी स्थिति क्या होती थी, पता नहीं हम और कितने बिगड़ जाते थे और कितनों को बिगाड़ते थे। लेकिन बाबा के बन गए तो क्या हो गया, अपने आप को परिवर्तन करना शुरू कर दिया और औरों को भी परिवर्तन में सहयोग देना शुरू किया। तो जब हम देखते हैं कि परमात्मा के साथ संसार के अंदर हम पाठ बजाते बजाते जब से द्वापर से लेकर के उसके कनेक्शन में आने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और जब जब भी उसकी मदद हमको मिली है, तब तब हमने भगवान को भी धन्यवाद करते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि संगम पर उसका परिचय हमको मिलता है। आधा कल्प बिना परिचय से ही हम उसके साथ चल रहे थे, उसको याद कर रहे थे, उसकी मदद महसूस कर रहे थे। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे जब मैं आता हूँ तब मैं अपना परिचय जब तुमको देता हूँ, तभी भी बच्चे बाबा को पूरा पहचानते नहीं है। नंबर वार जिसमें बाबा हम सभी को कहता है कि बच्चे नंबर वार है, तो हम सभी ने बाबा को कहाँ तक पहचाना है और बाबा हमें वो शक्ति दे रहा है जिससे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ तो बना ही रहे हैं, लेकिन सारे ही संसार को परिवर्तन करने के लिए अपने आप को निमित्त बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सारे गुण और शक्तियों का स्टॉक जमा करना है, तब ये कार्य परिवर्तन का हो सकता है। अब जब परिवर्तन का लक्ष्य हमने लेकर के कार्य करना शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या लगेगा। कोई भी चीज को परिवर्तन करना है तो उसकी सामग्री तो चाहिए, तो इसकी भी हमें सामग्री को इकट्ठा करना होगा और वो हम कर रहे हैं। यहाँ वैसे बैठकर तपस्या कर रहे हैं, ये तपस्या से ही हम वो सारी सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं जिसमें आत्मा को परमात्मा से प्रेम भी मिल रहा है, शक्तियां भी मिल रही है, गुण भी मिल रहे हैं, और साथ में उन सबको प्रयोग कैसे करना, जीवन में धारण कैसे करना और प्रैक्टिकल में उसको अपने कर्मों में कैसे लाना है, उसकी सारी युक्तियां भी जो बाबा से हमको मिलती है जिसको हम ज्ञान कहते हैं। तो इस समय पर देने वाला दाता जो मैं दे रहा है, तो सबसे पहले तो हम उस प्यारे शिव बाबा का भी धन्यवाद करें और इस धन्यवाद को बहुत शांति से एकांत में बैठ करके अब अपने अंदर से वो अभ्यास करने का प्रयास करें और वो प्यार बाबा के लिए निर्मित हो अंदर में कि कितनी मदद बाबा से मुझे मिली है। तो बाबा की मदद किन किन रूपों से मिली आज तक, तन को मदद मिली बाबा की। बाबा जब हमें अपनी सकाश देता है, अपनी लाइट और माइट हमें पहुंचाता है, तब वो हमारे तन को भी आराम दिलाती है, मन को भी आराम दिलाती है। और जो धन जिसने हमें कभी दुख दिया, कभी सुख दिया, कभी लड़ाई करवाया, ऐसे धन को भी शुद्ध पवित्र बना करके उस धन के द्वारा विश्व कल्याण का कार्य कराना, ये एक बहुत बड़ी परिवर्तन की ताकत जो है बाबा से हमको मिलती है। आप सोच सकते हैं इस तन की ताकत से भी कईयों ने कितनी लड़ाइयां की, कितने झगड़े किए होंगे, किसके पास बोल की ताकत थी, उस बोल के ताकत से भी कितने व्यर्थ कार्य किए, व्यर्थ बोल बोले होंगे, धन से कितनी लड़ाइयां लड़ी होंगी, एक दूसरे का खून भी बहाया इस संसार में। तो हम देखते हैं कि ये जो सारी निगेटिविटी जीवन के अंदर निर्मित हो गई है, उसको बाबा अपनी लाइट दे रहा है, हम आत्माओं को बाबा से मिल रहे हैं और हम बच्चे अंदर ही अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं कि हम बाबा की यादों में बैठ जाते हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों को कितनी प्रकार की ट्रीटमेंट कराता होगा, हम तो सिर्फ याद में बैठ गए, लेकिन हमारी अंदर में कितनी बिगड़ी हुई बातें हैं, कोई किस विचारों से प्रभावित है, कोई किस विचारों से, कोई किन कर्मों से प्रभावित है, और वो सारा प्रभाव आत्मा के ऊपर एक ऐसी स्थिति ले आता है कि वो उड़ना चाहे तो भी नहीं उड़ सकती है, पंख होते हुए भी वो सिर्फ पंख फड़फड़ा रहे हैं लेकिन उड़ नहीं सकते हैं। ऐसी जब अवस्था में बैठे होते हैं, तब जब हम ऐसी तपस्या में बैठते, संगठन में बैठते हैं, तो वो बाबा की लाइट जो हमारे ऊपर आती है वो हमारे पंखों में बल भरता है। इसलिए ऐसे संगठन की तपस्या की हमको बहुत आवश्यकता है। तो जो जो हमें सहयोग मिल रहा है, हम हर पल इस संसार को धन्यवाद देने का एक कार्य हमको करना है, क्योंकि हम बच्चे सभी से लेना बहुत समय से जानते हैं, लेकिन अब बाबा ने हमको सिखाया बच्चे देकर जाना, भी जो भी है वो सब देके जाऊं। अब देके जाना है तो हमने लिया तो बहुत है संसार से, तो देने के लिए अभी हमको लास्ट में एक धन्यवाद इतना अच्छा है कि सब आत्माओं को हम बहुत सुंदर रीति से सभी से विदाई लेकर, सबसे छुट्टी लेकर, जैसे अभी हमारी बहन सुना रही थी कैसे विदाई का वो एक प्रोग्राम रहा हरीश भैया का, लेकिन ऐसे हम देख रहे कि हम सभी को भी विदाई लेनी है संसार से, लेकिन बहुत सुंदर रीति से, तो क्यों ना हम सभी का बैठ के धन्यवाद करते चले। तो ये धन्यवाद का एक सुंदर प्रोजेक्ट आप सभी के लिए बना हुआ है, जो इस वर्ष में आप सभी को उसको प्रैक्टिकल लाने के लिए चलते फिरते कार्य करना है, इसको कोई बैठ के करना ऐसा नहीं है, लेकिन सारा दिन जैसे आप घर में शुरुआत करते हैं, तो एक दिन की दिनचर्या भी अगर अपने सामने लाए तो कितनों का धन्यवाद आपको करना पड़ेगा। आप सवेरे उठते ही नल खोलते हैं, नल में पानी आता है, किसी ने तो पानी पहुंचाने का काम किया है ना आपके घर तक, तो उसका भी तो आपको धन्यवाद करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही तो यूं ही नहीं आता है आपके पास। हर चीज हमको जब मिल रही है सुबह से रात तक, कोई तो उसके पीछे हमारे लिए मेहनत कर रहा है, और उस मेहनत करने वाले को हम गुप्त रीति से, वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम उसको याद करते हुए, हमें तो पता है कि वो एक आत्मा ही है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, आत्मा मेरा भाई है, आत्मा मेरी बहन है, बस उस रूप में हम उसको याद करते हुए उसको अगर हम दिल से धन्यवाद देते हैं, तो जरूर हमारे आपसी जो वाइब्रेशंस एक दूसरे के प्रति पहुंचेंगे वो बहुत सुखद होंगे, ताकि वो जो रोज हमको टाइम पर पानी देने वाला व्यक्ति हो ना, उसको एक खुशी के लहर आएंगी और वो सोचेगा मुझे ये सेवा करने में बड़ा आनंद मिलता है, मैं जब पानी देता हूँ अपने टाइम पर, अपनी ड्यूटी निभाता हूँ, तो मुझे एक अलग आनंद मिलता है कि सबको समय पर ये सहयोग मिल रहा है, पानी मिल रहा है। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे सूक्ष्म वाइब्रेशन कैसे कार्य करना शुरू करेंगे, हम अपने फैमिली में भी एक दूसरे के सहयोग के आधार से जीते हैं, उन सभी को भी हम इस प्रकार से अंदर दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि मुख से करेंगे तो कहेंगे ये कौन सी बात घर में लेकर के आए, खाना खिलाए तो धन्यवाद, पानी पिलाए तो धन्यवाद, लेकिन ये सब बातें हमको अंदर से करनी है, अपने श्रेष्ठ संकल्पों से करनी है। और उन सभी को वो अनुभव होना चाहिए कि आज अगर उन्होंने हमको भोजन खिलाया और हमने अंदर से उनका बहुत प्यार से धन्यवाद माना है, तो जरूर है वो दोबारा जब हमको भोजन खिलाएंगे तो वो कहेंगे आपको भोजन खिलाने में बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी मिलती है। ऐसा न हो कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि आए भोजन करने के लिए, अपने आप ले नहीं सकते, अपने आप खा नहीं सकते हैं। कोई हमारे लिए इस प्रकार से भावनाएं व्यक्त करता है अंदर ही मन में और मजबूरी से हमको संभाल रहा है, पालना कर रहा है, तो वो कोई प्यार नहीं है और वो न कोई हमारी सकारात्मक ऊर्जा कार्य कर रही है। तो इसके लिए एक सूक्ष्म रीति से ये शक्ति हमारे जीवन के अंदर कार्य करती है और वो हमें कैसी इमर्श करनी है। बाबा ने कहा, बच्चे आप मुख से जब किसी को कहते हो ना, वो बोल सिर्फ कानों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जब आप मन से कहते हो तो उसकी बात उसके मन तक पहुंच जाती है। तो इसी विधि से हमको ये कार्य करना है कि अगर हम मन से दिल से किसी को भी उसका धन्यवाद करते हैं तो जरूर है कि उसको अंदर में बहुत सुकून मिलेगा। आज जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं, कभी किसी को थोड़ा सहयोग दे देते बैठने के लिए, साथ में ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं, कोई कहता अगले स्टेशन पर उतरना है थोड़ी देर बैठो, तो हम बड़े प्यार से उससे बात करते हैं। एक मिनट साइलेंस करते जब तक लाइट आएंगी तब तक। तो आप सभी को आइडिया तो आ गई कि हमें धन्यवाद का प्रस्ताव कैसे रोज करना है, और बहुत आनंद आएगा आप सभी को इसके कारण, और हम देखेंगे कि हमारा योग भी आसानी से लगता जाएगा, क्योंकि योग के लिए भी हमको अपना मार्ग बहुत क्लियर करना है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमारा रास्ता भी क्लियर हो तो हमको अच्छा लगता है, ट्रैफिक जाम होता है तो हम थक जाते हैं, रास्ता ऊपर नीचे हो तो हमको मजा नहीं आता है। वैसे हमारे योग के लिए हमारा बुद्धि का जो रास्ता है वो हमको क्लीन करना है, तो इसके अंदर इन सभी की जो संकल्पों के रास्ते में जो रुकावटें आती है इन सभी को हमको हटाने की आवश्यकता है, तब हम बैठें और हमारा योग लग जाए, हम बाबा के पास सेकंड में पहुंच जाएं, क्योंकि बाबा हमें बार बार कहता है कि बच्चे एक सेकंड में अशरीर हो जाओ, एक सेकंड में देही अभिमानी बन जाओ। तो ये एक सेकंड जो बाबा कह रहा है इसके लिए हमें अपने रास्ते को कितना क्लीन रखना पड़ेगा। तो ये रास्ते क्लीन करने के लिए एक धन्यवाद का प्रस्ताव है कि मैं अपने बुद्धि को एकदम सहज सरल बाबा के पास ले जा सकूं। तो जिन भी आत्माओं से हमने जो भी सहयोग आज तक लिया है, हमारे लौकिक जीवन में, अलौकिक जीवन में, इस अलौकिक जीवन के अंदर अगर हम अपने आप को देखें तो कहां हम थे, कैसे थे, किसने हमारी उंगली पकड़ी, कैसे हमको बाबा के घर में लाया। अब अपनी यात्रा को याद करो इस ईश्वरी जीवन की, और उन एक एक को आप दिल से धन्यवाद दो। हो सकता है जिसने आपको ज्ञान में लाया है वो आज ज्ञान में नहीं भी होंगे, वो कई दुनिया के अंदर पुरानी दुनिया में जी रहे होंगे, लेकिन बाबा ने आपको लाने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को यूज तो किया, आपके लिए खास बाबा ने उसको निमित्त बनाया, तो कैसी भी थी आत्मा और कहां भी रह रही है, लेकिन ठीक है, बाबा का एक मददगार बच्चा बन गया मुझे बाबा का बनाने में, इसलिए उस आत्मा का भी हम बहुत दिल से धन्यवाद करें। ऐसे हम अपने जीवन के अंदर एक एक को देखते चले कि मेरे इस जीवन के पथ को सुगम बनाने के लिए मुझे कितनों ने मदद की है। कोई ऐसी बातें भी आई होंगी जो हमारे लिए कठिन रूप बना करके चले होंगे, कई बार स्वभाव संस्कारों का टक्कर भी हुआ होगा, लेकिन हम देखते कि उसमें भी हम देखते कुछ ना कुछ भला हो ही गया अपना। तो जो हमारा भला हो गया उसके लिए उस आत्मा को भी हम धन्यवाद करें कि अगर आप मेरे साथ ये संस्कार का टक्कर नहीं करते थे तो ये बड़ा मौका जो मुझे मिला वो नहीं मिलता था, हम वहीं पर पड़े रहते थे। ठीक है, हमने उसके कारण अपना स्थान बदला, अपनी योग्यताओं को आगे और कार्य में लगाया, तो जो भी हमको आगे बेनिफिट हो गया है उसको हम याद करते हुए जिसने भी हमको दुख दिया उसका भी धन्यवाद कर दो, क्योंकि अगर उसे दुख नहीं दिया होता तो शायद हम यहाँ नहीं होते थे, बाबा के बनते नहीं थे, इसलिए उनको भी धन्यवाद दो, क्योंकि बाबा ने कहा ड्रामा हमारे लिए कल्याणकारी है। अगर बाबा ने कहा बच्चे आपको दुख नहीं मिलता तो आप बाबा के पास आते ही नहीं थे, कोई ना कोई आत्मा निमित्त तो बनी जीवन के अंदर दुख देने के लिए भी, लेकिन उसमें भी मेरा भला है, इसलिए उस आत्मा का भी बहुत दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि चलो ऐसी आत्मा निमित्त बनी जीवन में, लेकिन जिसने मुझे बाबा का बना दिया है। तो सबसे बड़ी बात है हम बाबा के बन गए हैं, चाहे किसी भी कारण के कारण हम बने हैं, लेकिन उसके लिए जो भी निमित्त आत्मा बनी है, लेकिन उसका हमें दिल से धन्यवाद करना है। तो ऐसी बहुत सुंदर विधि से अब हमको इस प्रोजेक्ट को शुरू करना है, और इसमें विशेष बातें हैं कि कैसे हम बाबा के साथ अपने आप को निरंतर जोड़ के रखें, और निरंतर अभ्यास करने के लिए हमें ये साधन मिला हुआ है, क्योंकि एक हम देखते हैं कि हमें कुछ नवीनता चाहिए। हर बार जब हम कुछ प्रोग्राम बनाते हैं हम सोचते हैं कि इसमें इस बार नया क्या करें, नया करते तो नया आनंद सबको मिलता है, तो नवीनता हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। पुरुषार्थ तो वही है कि हमको बाबा से जुड़ के रहना है, बाबा से दूर नहीं रहना है, तो इसके लिए मुझे कोई नई विधि अपनानी है। तो ये विधि जैसे रोज हम उठते हैं क्या क्या हम प्राप्त करते हैं अपने जीवन के अंदर, उन सब प्राप्तियों के लिए बाबा कैसे हमको मदद कर रहे हैं, तो हम बाबा का भी सारा दिन में कितने बार धन्यवाद करते हैं, खाते पीते उठते बैठते हम सुख की नींद कर रहे हैं तो भी हम बाबा को धन्यवाद करें कि बाबा आपके यादों में हम सोते हैं तो हमको सुख की नींद मिलती है। जिस नींद के लिए दुनिया कितनी तड़प रही है और यहाँ तो देखो नींद कितनी आराम से आ जाती है, हॉल में बैठे बैठे भी नींद आ जाती है, यहाँ तो आनी नहीं चाहिए लेकिन वो यहाँ भी आ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि जिसके लिए लोग तरस रहे हैं और हम स्वाभाविक रीति से सहज रीति से प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसे ही संगमयुग की प्राप्तियों को बुद्धि में रखते चले और अपने अंदर ये गीत गाते चले, तो इसके कारण हमारे अंदर वो शक्ति मिलेगी जो हम सभी के कृतज्ञ हो गए और हम सभी को दिल की दुआएं मिलेगी। और सबसे पहली बात है कि हमें एक सुंदर बात बुद्धि में लानी है कि बाबा ने भी हम अंतिम समय का दृश्य सामने दिया हुआ है कई बार कि बच्चे लास्ट में न हॉस्पिटल रहेंगे, न दवाई रहेगी, न डॉक्टर रहेंगे, न कोई कोर्ट रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करो तो कोई वकील नहीं मिलेगा, कोई कोर्ट नहीं होगा, लेकिन सब प्रकार की प्रॉब्लम तो खड़ी रहेगी। ऐसे तो नहीं कि हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं है तो बीमारी नहीं होंगी, दर्द नहीं होगा, वो तो सब चल रहा होगा लेकिन वो सब चीजें उस समय पर हमको नहीं मिल पाएंगी। अब ऐसे टाइम पर हमें मदद करने वाली एक ही चीज है, वह है दुआ, और ये दुआओं का स्टॉक बाबा ने कहा आपको जमा करना है, तो ये धन्यवाद का प्रोजेक्ट जो है ना हमें दुआएं जमा करवाएगा। तो सेकंड सेकंड में अभ्यास हो रहा है ना, तो हमें साइलेंस में जाने का ये मौका मिल रहा है, तो इसलिए लाइट जारी उसको भी धन्यवाद देंगे कि वो हमारे से पुरुषार्थ करवा रही है। तो कोई भी चीज से हमें परेशान नहीं होना है, तंग नहीं होना है, लेकिन उसको भी हमें धन्यवाद देना है कि उसके कारण मुझे बाबा की याद आ गई है। तो ऐसी बात को अगर हम बुद्धि में धारण करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि हम बहुत हल्के रहेंगे, भारीपन हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये अभ्यास करने के लिए आप और भी नवीनता को धारण कर सकते हैं, और इस प्रोजेक्ट के लिए आप और अपनी कल्पनाओं को तैयार कर सकते हैं कि हमें इसको कैसे अप्लाई करना चाहिए और कैसे बहुत अच्छी रीति से इसको हम पूरे साल भर में अभ्यास में लाएं। तो जब दोबारा इस प्रोजेक्ट के साथ हम बैठेंगे, बात करेंगे, तो आप उसके लिए पहले से ही विचार करके रखना है। एक तो आपको आज आइडिया दे दी है कि हमें ये धन्यवाद इस किस प्रकार से करना है, आत्माओं का भी धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद। तो इन तीनों का जो धन्यवाद हम करेंगे तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, आप सभी को ये होमवर्क है, करेंगे ना सभी ये होमवर्क। तो इसके लिए ये जरूरत नहीं कि हमें ये प्रोजेक्ट में ही रहना, उस प्रोजेक्ट में रहना है, जो चीज अच्छी लगती है उसको हम ऐड कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ में, चाहे आप कोई भी ग्रुप में हो, लेकिन हर ग्रुप में जो जो चीजें हमको अच्छी लग रही है उसको अप्लाई करने में हमको कोई बंधन नहीं है। या सारी बातें तो हमारे पुरुषार्थ के लिए ही है, तो हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें हम अपने आप में कोई अच्छी बात को लेकर के करें जो हमको दिल को भा रही है और जिसका आनंद मिल रहा है, वो हम करने का प्रयास करें। क्योंकि सारी ही बाबा के गुण और शक्तियों को इस संसार की सेवा में हमको यूज करना है, बाबा से लेना है और संसार को देना है। तो देने का जो तरीका है, जो बाबा ने कहा आप अपने कर्मों से दो, अपने बोल से दो, वाणी से दो, चाल चलन से दो, चेहरे से दो, तो ये सिर्फ देने का कार्य मुझे करना है, तो लेने का जो कार्य है वो भी मुझे ही करना है। तो उस लेकर के देने तक हमारे अंदर ये धन्यवाद की कड़ी जुड़ी हुई हो तो हमारा स्टॉक अच्छी तरह से जमा होता रहेगा। क्योंकि ले रहे हैं बाबा से, इसलिए बाबा का भी धन्यवाद है, और बाबा हमें सेवा दे रहा है सब आत्माओं तक ये माल सप्लाई करना, सुख शांति आनंद प्रेम, ये सब हमें सप्लाई करना है संसार को, क्योंकि संसार के गोडाउन सब खाली हो गए हैं। कोई भी गोडाउन में सुख शांति आनंद प्रेम रहा नहीं है, तो हम सब बड़े से बड़े बाबा के सप्लायर है, और बाबा से हमको लेना है और आत्माओं को देना है। और बाबा ने कहा हर धर्म की आत्मा आपके पास आएंगे और वो लेकर जाएंगे, तो हमारे पास स्टॉक कितना चाहिए। स्टॉक के लिए बाबा ने कहा ना आप चेक करो, क्योंकि आप मुक्तिदाता हो, तो मास्टर मुक्तिदाता बनकर के आपको आत्माओं को मुक्त करना है। तो जब एक आत्मा नहीं लेकिन हजारों लाखों आत्माएं, करोड़ों आत्माओं को मुक्ति देनी है, तो उस समय पर उनको जो चाहिए वो हमको देना होगा। उन्हें शक्ति चाहिए, उनके रहे हुए विकर्मों को विनाश करने के लिए उनको ताकत देनी पड़ेगी, तो वो सब स्टॉक हमारे पास चाहिए। क्योंकि उसी समय पर आत्मा मुक्त होंगी जब उसके विकर्मों का खाता खत्म हो जाएगा, तब आत्मा शरीर छोड़ सकती है। तब तक तो आत्मा और शरीर का कनेक्शन ऐसा जबरदस्त रहता है कि चाहे कितना भी प्रयास करो, लेकिन जब तक वह कार्मिक अकाउंट खत्म नहीं होगा तब तक आत्मा शरीर को छोड़ नहीं सकती है। तो वह कर्म का बंधन तोड़ने के लिए भी हमें उनको ताकत देनी पड़ेगी, शक्ति देनी पड़ेगी। तो ये लास्ट का अंतिम कार्य जो बाबा ने हमको दिया है, उस कार्य करने के लिए भी हमें ये अभ्यास करना है कि कैसे मैं बाबा से अपना स्टॉक भरपूर करूं। और उसके लिए जो भी आत्माएं, चाहे मुझे योग तोड़ने वाली भी आत्माएं बीच में आ रही है, योग के लिए बैठे घर में, आप योग के लिए बैठे, किसने बर्तन गिरा दिया, कोई झगड़ा करने लग गया घर में, कोई बच्चे लड़ाई करने लगे, लेकिन आप क्या करोगे उस परिस्थिति में भी, क्या हलचल में आ जाएंगे, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो विनाश के नगाड़े बजेंगे, उसके बीच में हमको याद करना है, बहुत सारी लड़ाइयां चलेगी, हाहाकार मचेगा, उसमें भी हमको बाबा को याद करना है। तो ये सारी छोटी छोटी बातों को अगर हम मन पर लेते हैं और हम अपनी अवस्थाओं को खराब कर देते हैं, लेकिन अभी हमको ये अभ्यास करना है कि नहीं, ये सब कुछ जो चल रहा है ना, मुझे एक अभ्यास करा रहा है। चलो हम योग में बैठे हैं, कोई आवाज कर रहे हैं, कोई चीज गिरा रहा है, लेकिन हम ये सोचो कि इस परिस्थिति में भी मुझे एकाग्र होना है और इस परिस्थिति में भी मुझे अशरीरी बनना है, तो इसकी प्रैक्टिस करने का एक मौका इन आत्माओं ने दिया है। तो इसलिए मैं इन आत्माओं का धन्यवाद करूं कि चलो जिन्होंने भी हलचल की, कुछ भी किया, लेकिन मुझे ये अभ्यास करने का मौका मिला। तो सारा दिन हम किसी भी बात से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आपके भोजन में नमक ज्यादा हो गया आज और आपको वो भोजन मिल रहा है, भूख बहुत लगी हुई है, लेकिन आप उस समय पर भी अभ्यास करो कि विनाश के टाइम पर अगर मेरा पेपर ऐसा आएगा तो उस घड़ी मेरी स्थिति कैसे एकरस रहेगी। आज तो ये तो मिल रहा है जो मुझे बाबा ने आज भोजन दिया, लेकिन उसमें नमक ज्यादा है या कम है, तो ये एक मेरी स्थिति के लिए, परिपक्व बनाने के लिए, मुझे एक अभ्यास करने के लिए मौका मिला है कि इस घड़ी हम अपने आप को कैसे स्वस्थिति में स्थित रखें। ऐसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर उन परिस्थितियों को, उन बातों को हम धन्यवाद देने का अभ्यास करें। अच्छे सहयोग को तो हम धन्यवाद दे ही रहे हैं कि जिसने हमको टाइम पर मदद कर दिया, भूख लगे खाना दे दिया, तो हम उसको धन्यवाद कर रहे हैं। तो वो तो सहज बातें, कॉमन बातें, आप उसको धन्यवाद कर दोगे, लेकिन विशेष ये अभ्यास करना है कि ऐसी विपरीत बातें आ रही है लेकिन हम उसको अंदर से धन्यवाद कर सकते हैं। तो ऐसे कितनी सारे पेपर सारा दिन में आते रहते हैं, लेकिन क्या हम उसमें अपनी स्थिति को बिना डिस्टर्ब किए हुए, बिना हलचल में आए हुए, हम अपनी मन को एकाग्र कर सके? क्योंकि सारे दिन की दिनचर्या अगर हमारी ठीक रहेंगे तो ही हमारा अमृत वेला ठीक रहेगा, तब हम अमृत वेले अच्छी तरह से योग कर सकते हैं। नहीं तो सारा दिन के अंदर की एक छोटी सी बात भी हमारा अमृत वेला बिगाड़ सकता है, और अमृत वेला बिगड़ गया माना दिन बिगड़ गया। सबसे बड़ी शक्ति तो हमें अमृत वेले ही बाबा से प्राप्त हो रही है, तो उस शक्ति को जमा करने की वेला को मुझे खराब नहीं करना है, इसलिए सारे दिन का अभ्यास हमको करना है। और इसमें मुझे वही बुद्धि में रखना है कि मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। बनाने के मार्ग में अलग अलग प्रकार से मुझे सहयोग मिल रहा है, तो ये अभ्यास आप जरूर करेंगे, और जितना इसका प्रयोग अपने जीवन में करके, अपनी स्थिति को बना करके, अपने आप को संतुष्टता प्राप्त कराएंगे। हम अपने आप से पूछे कि मैं अपनी अवस्था से संतुष्ट हूँ, मैं अपने योग की स्थिति से संतुष्ट हूँ, मैं अपनी धारणाओं से संतुष्ट हूँ। अगर बाबा ने कहा ना, अपना संतुष्टता का सर्टिफिकेट अगर आप नहीं ले रहे हो, माना अभी तक आपका पुरुषार्थ बहुत बाकी है। तीन सर्टिफिकेट सबको पता है कि हमको अंतिम बाबा के सामने जाएंगे तो ये तीन सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। किसके कौन से संतुष्टता के तीन सर्टिफिकेट है? तो सबको पता है कि स्वयं का सर्टिफिकेट भी चाहिए। अब हम पहले पुरुषार्थ करें धन्यवाद के द्वारा कि हम स्वयं से संतुष्ट रहने का एक सर्टिफिकेट बना ले वे अपना, और देखे कि सचमुच में अपने पुरुषार्थ में अपने आप से कितना खुश हूं। क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे अभी ही समय है आपके लिए, और ये सुख, ये परमात्म प्यार जो हम सभी को अब मिल रहा है, ये सत्युग में भी नहीं मिलने वाला है, और कहीं हम इसको व्यर्थ में गंवा तो नहीं रहे। ये प्राप्ति करने का समय है, और ये प्राप्ति करने का समय कहीं मेरा यू ही तो नहीं जा रहा है। तो ये भी हमको थोड़ा अंदर में ध्यान रखना है कि ये समय चला जाएगा तो फिर बाद में मुझे तो ढूंढने से भी ये चीज नहीं मिलने वाली है। तो ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम की अनुभूति वाला ये जीवन है। एक मुरली में बाबा ने कहा है बच्चे सत्युग में आप जो सब प्राप्तियों का अनुभव करने वाले हो उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति, कि जीवन में आप मुक्ति की अवस्था में हो। यहाँ जिन प्रकार के बंधन है उन सबसे मुक्त होते वहां पर, लेकिन बाबा ने कहा वो स्थिति अगर आपने संगम पर अनुभव नहीं की है तो आप सत्युग में भी नहीं करने वाले हो। तो सत्युग में हम किस स्थिति में पाठ बजाएंगे उसका यही हमारा पता चल जाएगा कि यहाँ हम कितने संस्कारों के बंधनों से मुक्त हैं, अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हैं, कितने प्रकार के बंधनों में बंधी हुई आत्मा आज मुक्त होकर के जी रही है। तो अगर वो अभ्यास हम करें अभी अपने आप को कि मैं सत्युगी आत्मा हूं तो मेरे अंदर वो सुख शांति का अनुभव कितना गहरा है, और ये गहरा अनुभव हमें इस धन्यवाद के प्रोजेक्ट से शायद हम बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे, क्योंकि हमें सबको धन्यवाद देना है। जिसने किसी ने भी आपको कोई टाइम पर सहयोग नहीं दिया है ना उसको भी धन्यवाद दो। क्यों धन्यवाद देना, उसने आपको टाइम पर सहयोग नहीं दिया और आप उसको धन्यवाद दोगे? देंगे? क्यों देंगे? उसने आपको सक्षम बनाया कि ये काम आप खुद टाइम पर कर सकते हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपको इंडिपेंड बनाया उसने, नहीं तो आप डिपेंड रह रहे थे। लेकिन आपको अभी पता है कि ये तो कार्य मैं भी खुद अपने टाइम पर कर सकती हूँ। तो जो भी बातें आ रही है हम उसमें देखें कि हम हर प्रकार की बात में क्या हम उसको धन्यवाद दे सकेंगे, दे सकेंगे सभी? तो ये पूरा याद रखना, कुछ भी हो जाए, अगर कोई ने कोई काम अधूरा किया और अधूरा छोड़ दिया तो भी उसको धन्यवाद करो, क्योंकि अधूरा करने का मुझे चांस मिला ना उसको कंप्लीट करने का, तो हमारा भी एक भाग्य बन गया। जैसे साकार में बाबा मम्मा क्या करते थे, बच्चे जो सारा भंडारा किचन वगैरह समेटते थे, समेटते समेटते आधा छोड़ के चले जाते थे और मम्मा जाकर के सारा किचन समेटती थी, बैठकर के बच्चों ने सब जो सब्जियां साफ की है उसमें आधी सब्जियां छोड़ दी है, बाबा बैठकर मम्मा बैठकर के वो सारी सब्जियां चुनते थे उसमें से। माना किसी ने आधा छोड़ दिया है लेकिन उसको अधूरे को भी पूरा करने का मौका मिला है। तो बाबा ने मधुर शिक्षाएं भी दी और साथ में उन आत्माओं को ये भी सिखाया। उन आत्माओं के लिए भी देखो बाबा ने भी अंदरूनी क्या पुरुषार्थ किया होगा कि बाबा उस खड़ी उन आत्माओं से नाराज नहीं हुए और यज्ञ की चीज को व्यर्थ से भी बचाया, और आज तक वो लेसन हम सभी ले रहे हैं बाबा से मम्मा से कि बाबा मम्मा कैसे यज्ञ की हर चीज को संभालते थे। मतलब वो एक बात बाबा ने जो शांति से प्रेम से अपनाई, बच्चों की बातों को दिल में न रखते हुए बाबा ने जो प्रैक्टिकल में पार्ट प्ले किया, आज हम सभी के लिए वो एक एग्जाम्पल बन गया है। क्या हमारी जीवन भी ऐसी किसी के लिए एग्जाम्पल बन सकती है? क्योंकि बाबा कहते आपके पीछे भी बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो आपको फॉलो कर रही है, हमें नहीं पता चल रहा है कौन हमको फॉलो कर रहा है, लेकिन हमें भी फॉलो करने वाले बहुत हैं। तो ये जरूर अटेंशन रखना है कि हम जैसा कर्म कर रहे हैं मुझे देख के और करने वाले हैं, ये ब्रह्मा बाबा की जो धारणा थी वो हर ब्राह्मण बच्चे की धारणा हो, तब हम देखते हैं कि हमें बहुत सारी दुआएं प्राप्त हो सकती हैं। तो हमें अलग अलग प्रकार का ये अभ्यास करते हुए हमारे दुआओं का स्टॉक पूरा फुल करना है, और दुआ ऐसी चीज है। तो बाबा ने कहा जब बच्चे तुमको कोई तकलीफ आ जाए, जब कोई दर्द आ जाए शरीर में, तो ये दुआ तुमको मदद करेगी। तो इसलिए दुआओं की आवश्यकता बहुत है। तो इस धन्यवाद के प्रोजेक्ट से हम दुआओं का स्टॉक जमा करें और मेहनत करें थोड़ा अपने आप को सेट करने की, कि कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन मुझे हलचल में नहीं आना है। हलचल में आए वना फेल हो गए, और कितने बार फेल होते वो भी लिखना, कितने बार फेल होने की छुट्टी है, कितनी बार? ऑफिशियली बाबा ने कहा एक ही बार, अगर कोई गलती होती तो बाबा ने कहा एक बार ठीक है, लेकिन बाबा ने कहा दोबारा नहीं होना चाहिए। मम्मा का एक शिक्षा थी ना कि एक बार की हुई गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो वो हम देखे कि एक बार अगर हम अपनी स्थिति को हलचल में ला रहे तो एक गलती हो गई मेरी, लेकिन मुझे दोबारा ये गलती नहीं करनी है। आज कोई बात से मेरी स्थिति को हलचल में लाने वाली निमित्त बनी, कल कोई और बात हो जाएगी, लेकिन वो तो गलती हो जाएगी ना, फिर तो वो दूसरी गलती की नहीं चाहेंगे कि हमने हमारी स्थिति को हलचल में लाया। तो ये एक लक्ष्य में रखना है कि ये गलती मुझे दोबारा नहीं करनी है, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें मेरी सहन शक्ति को बढ़ाना पड़े, जिसमें मुझे धीरज रखना पड़े, जिसमें मुझे शांति को अपनाना पड़े। बाबा ने बहुत सारे गुणों का स्टॉक हमको दे दिया है, कोई के पास स्टॉक की कमी है, बाबा का भंडारा तो भरपूर है, कोई शक्ति की कमी नहीं है। तो क्यों ना हम बाबा की उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने आप को चलाने का अभ्यास करें, ताकि हम अंतिम समय पर फुल पास हो जाएंगे, पांचवीं ऑनर बन जाएंगे। ये नहीं कहना कि भाई मैंने सहन तो बहुत किया, अब मेरे से सहन करने का नहीं होता है। तो बाबा ने कहा मेरे भंडारे में तो लिमिट शक्ति नहीं, अनलिमिटेड शक्ति है। तो माना हम बाबा से ले नहीं रहे, सीमित शक्तियों से जी रहे हैं, लेकिन बाबा हमें दे रहा है। तब बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप बन जाओ कि इस घड़ी मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं कंबाइंड हूँ, और मेरे पास सारी ही शिव बाबा की शक्तियां मेरे आत्मा में इमर्ज है। और उस घड़ी जैसी स्मृति का स्विच ऑन करेंगे, बाबा ने कहा आपके पास वह शक्ति हाजिर हो जाएगी। तो ये अभ्यास हमको इन परिस्थितियों में करना है, और हर परिस्थिति में पास होकर के हमको दिखाना है। तो ये बहुत सुंदर मदद हम समझते कि इस प्रोजेक्ट से आपको मिलेगी, तो आप जरूर अभ्यास करते रहना है, और अपने आप को अगले साल तक किस रीति से तैयार करके लाएंगे, कैसे बिल्कुल हम एकदम हल्के फरिश्ते एंजिल बन करके, कोई बोझ नहीं, अभी आत्मा एकदम हल्की। तो ये विशेष हम लक्ष्य लेकर के जाएं कि बहुत सारे मुझे उतार नहीं है, सब मुझे यही खत्म करना है, और मुझे बिल्कुल हल्का होकर के अब बाबा के संग में मौजों की जीवन जीनी है। तो ये श्रेष्ठ संकल्प लेकर के हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। ओम शांति, समय भी पूरा हो रहा है।
बहुत बहुत आभार हमारे आदरणीय अलका दीदी जी का। कृतज्ञता की शक्ति एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, जिसमें हम प्रश्न चित्त, दुख, कंफ्यूजन और शिकायतों की स्थिति से शिफ्ट हो जाते हैं। तो सभी को ऐसी सुंदर स्थिति में शिफ्ट होना है, सभी पार्टिसिपेट करेंगे प्रोजेक्ट में। बहुत बहुत आपके प्रति भी आभार, और दीदी का भी आभार। कैसे हमने देखा बीच बीच में जो लाइट्स जा रहे थे, तो दीदी ने उस परिस्थिति के प्रति भी बाबा की याद हमें रहनी चाहिए, ऐसे अभ्यास करते हुए उसके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की। और हम सभी आपको आश्वासन देते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में हम भी प्राप्तियों पर अपनी नजर रखते हुए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अभी हम सबके मध्य हमारे सम्मानीय अविनाश भाई आ रहे हैं एक बहुत सुंदर बाबा की याद का गीत लेकर।
रहेंगे मगर हम ओ बाबा तुम्हारे रहेंगे, नहीं चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम ओ बाबा तुम्हारे रहेंगे, नहीं चांद हो। वतन से ही बाबा करते इशारे, जो बच्चे हैं योगी वही मुझको प्यारे, तेरी याद दिल में समाते रहे, चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम ओ बाबा तुम्हारे रहेंगे, नहीं चांद हो। देह से निकल कर चले हम वहाँ, वो दुनिया नहीं बैठे बाबा जहाँ, अव्यक्त मिलन हम मनाते रहे, चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम ओ बाबा तुम्हारे रहेंगे, नहीं चांद होगा। हमारा ये बाबा से वादा रहा, रहेंगे वहाँ जहाँ उनकी रजा, अजी हाँ हम करते रहेंगे, नहीं चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम ओ बाबा तुम्हारे रहेंगे, नहीं चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम ओ बाबा तुम्हारे रहेंगे।